ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम सूची जारी की। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नशे और टीबी से निजात पाने के लिए जागरूकता अभियान पर जोर दिया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज भारत रत्न तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में 10 दिन से जारी पुस्तकायन मेला संपन्न हो गया है और 22वें दिव्य कला मेले में 20 राज्यों के लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी तथा कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को खड़ा किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से, पर्यावरण और विकास मंत्री गोपाल राय बाबरपुर से तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन बल्लीमारन से उम्मीदवार होंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे आत्मविश्वास से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से गायब है क्योंकि दिल्ली के लिए भाजपा के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने श्री केजरीवाल के दावे को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में जल और वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर है और सड़क, जल निकास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था खस्ताहाल है और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार झेलनी पड़ेगी। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मनीषा खन्ना।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की सराहना की है। संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कल श्री नड्डा करेंगे। इसके लिए 16 और 17 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज खेले गए तपेदिक मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच में लोकसभा स्पीकर 11 ने राज्यसभा चेयरमैन 11 को हरा दिया। इस मैत्री क्रिकेट मैच में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
इस क्रिकेट मैच का उद्देश्य तपेदिक के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर 11 का नेतृत्व किया, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा चेयरमैन 11 के कप्तान थे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत और तपेदिक यानी टीबी से निजात पाने के लिए जागरूकता जरूरी है।
इस संकल्प के साथ कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है। इस खेल कराने का मकसद यही है कि जिस तरीके से खेल में प्रतिस्पर्धा होती है अपने अपने खेल के अंदर जीतने की, उसी तरीके की प्रतिस्पर्धा है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से कहा कि इस मैच के माध्यम से न सिर्फ इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी बल्कि लोगों के बीच शारीरिक स्वस्थता का महत्व भी बढ़ेगा।
टीबी मुक्त भारत को लेकर के अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज क्रिकेट मैच रखा गया है। हम फिट रहेंगे तो देश फिट रहेंगे। खेल के माध्यम से एक जोश दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है।
इस मैच में अलग अलग क्षेत्रों के सांसदों की भागीदारी से इस बीमारी को समाप्त करने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के मेहरौली पुरातत्व पार्क में किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का आज जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोग इस पार्क में अलग अलग बोर्ड गेम खेलने के अलावा पार्क के रीडिंग रूम और कैफे का भी उपयोग कर रहे हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि विरासत को सुरक्षित, संरक्षित और पुनर्स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका आम लोगों को इससे जोड़ना है। उपराज्यपाल ने कहा कि जनता प्रशासन को चौकन्ना रखती है ताकि प्रशासन विरासत की रक्षा करने के कर्तव्यों से चुके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और उनके कार्य देश की एकता तथा अखंडता और विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री ने उन्हें देश की एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनकी वचनबद्धता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत नींव रखी। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाले सरदार पटेल का महान व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण का उनका संकल्प हमेशा देशवासियों का मार्गदर्शन करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के प्रति सरदार पटेल का समर्पण हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया में कहा कि सरदार पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक भारत के शिल्पी और राष्ट्रीय एकता के अद्वितीय प्रतीक थे। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में सरदार पटेल का योगदान, संघर्ष, साहस और संकल्प लोगों को सदैव प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या फिर माई गॉव ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। इस कड़ी के लिए सुझाव 27 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने राजधानी के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को शरणार्थियों के रूप में बसा दिया है। सुश्री आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित फ्लैटों में स्थानांतरित कर देगी। उधर श्री पुरी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसी भी रोहिंग्या प्रवासी को दिल्ली में सरकारी घर नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के दावे झूठे हैं और वास्तव में दिल्ली सरकार ही उन्हें शहर में पनाह देती है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को बसाकर उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाती है तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। श्री गुप्ता ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र और राज्य के सभी सरकारी विभागों के प्रयासों में एकरूपता की अपील की है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों की बैठक में कहा कि नवाचार और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने में राज्य वैज्ञानिक परिषदों की भूमिका महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन परिसर में 10 दिन से जारी पुस्तकायन मेला आज संपन्न हो गया। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस मेले में कई भाषाओं की पुस्तकें प्रदर्शित की गईं।
पुस्तकायन पुस्तक मेले में अलग अलग प्रकाशकों के स्टॉल पर काफी चहल पहल रही तथा लोग अपनी पसंदीदा लेखकों और कविताओं के साथ साथ नए रचनाकारों द्वारा लिखी गई किताबें खरीदते दिखे। पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ने के लिए पुस्तक मेले में कई सत्र भी आयोजित किए गए थे। इनमें हिंदी कवि सम्मेलन, बहुभाषी कविता पाठ, मुशायरा, गजल संध्या, लघु कथा वाचन और विभिन्न विषयों पर चर्चाओं ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए मेले में कहानी पाठ और चित्रकारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित किए गए थे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आगंतुक वसंत कुमार ने बताया कि उन्हें इस मेले में साहित्य से संबंधित काफी जानकारी मिली।
साहित्य अकादमी का प्रकाशन है या गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का प्रकाशन है और जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, किताब घर, राजपाल वगैरह के स्टॉल्स को देखा मैंने और यह पाया कि बहुत सारी किताबें जो अब नई पीढ़ी में लोग किताबें पढ़ने से जो चकरा रहे हैं से दूर जा रहे हैं, जो ऑनलाइन जो पढ़ाई का एक तरीका आ गया है, लेकिन यहाँ देख के खुशी हुई कि किताबें अभी भी उपलब्ध हैं और यंग जनरेशन के लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं। चौकिया ही सही, लेकिन इसी बहाने किताबों के प्रति उनका प्रेम जो है वो देखने को मिल रहा है।
वहीं मेले में आए प्रवीण कुमार मिश्र ने आकाशवाणी को बताया कि उन्हें यहाँ पुस्तकों का एक भव्य संचयन देखने को मिला जिसमें पुराने से लेकर नवोदित लेखकों की संरचनाएं शामिल थी।
जब हम लोग अपनी युवावस्था में 80 के और 90 के दशक में जिन लेखकों को पढ़ा था उनकी रचनाएं नए कलेवर में, नए रंग रूप में दिखी और उसके साथ ही साथ कुछ नए और नवोदित लेखकों की भी बहुत ही आकर्षक रचनाएं यहाँ देखने को मिली, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है साहित्य अकादमी का और उन्होंने बहुत ही रुचकर सा एक यहाँ पर पुस्तकायन बुक फेयर लगाया है।
निःशुल्क प्रवेश और किताबों पर आकर्षक छूट के साथ पुस्तक मेले ने राजधानी के लोगों में पाठन की विनोदपूर्ण और सार्थक व्यवहार को बढ़ावा दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, नई दिल्ली।
नई दिल्ली में इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का आज चौथा दिन है। इसमें 20 राज्यों के लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों तथा कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आयोजन देशभर के दिव्यांग शिल्पकारों, उद्यमियों तथा कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है।
दिव्य कला मेले में कई प्रकार के उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम, पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी और जीवन शैली से जुड़े सामान उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त गृह सज्जा, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद, खिलौने, उपहार, आभूषण और क्लच बैग समेत कई अन्य अनूठी वस्तुओं की भी भारी मांग देखी जा रही है। मेले में सांस्कृतिक उत्सव एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें दिव्यांग कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं में मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष नवीन शाह ने बताया कि दिव्यांगजनों को मेले के अलावा सरकार के जेम प्लेटफॉर्म पर भी उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा।
दिव्यांग जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं वो सामान बेचने जाएं कहाँ, तो उनको हम लोग यहाँ पे एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दिव्य कला मेला के साथ ये भी जुड़ता है कि यहाँ कोई बिजनेसमैन आते हैं तो वो भी इनको B2B बिजनेस देते हैं।
वहीं मुरादाबाद से आई निशा ने बताया कि मेले में उन्हें दिव्यांग महिलाओं द्वारा बुने गए स्वेटर बेचने का मौका मिला है।
स्वरोजगार योजना के तहत सारी गरीब महिलाओं को रोजगार देना यही मेरा उद्देश्य है और इस मेले से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है।
11 दिवसीय यह मेला 22 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श के साथ मैं दीपेंद्र कुमार।
दिल्ली के जनपथ में आज से तीसरे विरासत साड़ी महोत्सव की शुरुआत हुई। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये मेला देश के हथकरघा कारीगरों, साड़ी डिजाइनरों और खरीदारों को एक साथ लाने का अवसर होता है। ये महोत्सव सुबह 11 से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। देश के हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो संपन्न हो गया है। इसमें रिकॉर्ड 12,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में 54 देशों के 300 प्रतिनिधियों की भागीदारी रही, जिन्होंने आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा में रुचि दिखाई। हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय समेकित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत विकसित 1 हेक्टेयर की समेकित कृषि प्रणाली मॉडल को राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति BR कंबोज ने बताया कि इस मॉडल से किसान विभिन्न फसलों, सब्जियों तथा फलों की खेती के साथ केंचुए से बनी खाद के उत्पादन, मशरूम की खेती और बायोगैस के उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियां कर सकते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि सबके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने आज पंजाब के गुरदासपुर में शहीद राम प्रकाश प्रभाकर की 33वीं पुण्यतिथि पर कहा कि देश को मजबूत बनाने में नारी शक्ति की बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में आज थोड़ा सुधार देखने को मिला। आज शाम 7 बजे तक वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में थी और वायु प्रदूषण का स्तर 307 दर्ज किया गया। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में पानी का छिड़काव कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम सूची जारी की। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नशे तथा TB से निजात पाने के लिए जागरूकता अभियान पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ।